नमस्कार प्रिय श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा करते हैं कि आप सब आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। प्रिय श्रोताओ, हमें जानकर बेहद खुशी हो रही है कि हमारे इस बाइबल अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से पहला इतिहास नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए इससे पूर्व कि हम आज के बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, हो गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान, भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान। गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान।
प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा फिर से एक बार मसीह के नाम में नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मेरे प्रियो, मैं उन नए मित्रों का भी स्वागत करता हूँ जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इस समय मैं आपको बता दूं कि हम इन दिनों में बाइबल की पुस्तक में से पहले इतिहास की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि दाऊद जो युद्ध करना नहीं चाहता था परंतु युद्ध किया और उसने विजय को प्राप्त किया, परमेश्वर ने उसे विजय दिलाया। मित्रों, हम देख रहे थे अध्याय 18 से दाऊद के युद्धों का विवरण आरंभ होता है और अध्याय 20 में समाप्त होता है। हम देखेंगे कि अमोनियों और पलिस्तियों से दाऊद का युद्ध, इसराइल वरन दाऊद के स्वार्थ शत्रु अमोनी और पलिस्ती थे, इसराइल और इन शत्रुओं के मध्य समझौते की बात ही नहीं थी, और आज के अध्ययन में हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से एक दूसरे के प्रति समझौते करते हैं। मेरे प्रियो, आप मेरे साथ पहले इतिहास की पुस्तक 20 अध्याय उसके एक पद को निकालें, जहां पर लिखा है, फिर नए वर्ष के आरंभ में जब राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, तब योआब ने भारी सेना संग ले जाकर अमोनियों का देश उजाड़ दिया और आकर रब्बा को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया और योआब ने रब्बा को जीतकर ढा दिया। मेरे मित्रों, देखने से ऐसा लगता है कि योआब आक्रमणकारी है। यदि वह हो तो भी हमें स्मरण रखना है कि दाऊद ने उस युवा राजा को मैत्री भाव प्रदर्शन किया था, परंतु उसने दाऊद का अपमान किया और युद्ध करने आ खड़ा हुआ। अतः अभी यह युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, वैरी से, दुष्ट से समझौता नहीं करना है। मेरे मित्रों, आज की धारणा की भला और बुरा साथ साथ चल सकता है सर्वथा गलत है। आमोस उसके 3 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? जी नहीं। मेरे मित्रों, यदि आप दुष्ट के साथ निर्वाह कर रहे हैं तो स्पष्ट है कि आपने उससे समझौता किया है। आज संसार इस बात को भूल गया है। आज दुर्भाग्य की बात तो यह है कि मनुष्य सीमांत युद्ध से भयभीत होता है और सड़कों पर अराजकता से प्रसन्न है। उनका कहना है कि हमें अपराधियों को समझना है और उन्हें सराहना सिखाना है। क्या मैं कहूं कि हमारी आज की संस्कृति आडंबरपूर्ण है, जो सीमा से परे उबाने वाली अवस्था है? यदि बुराई सीमा पर है तो बुराई यहाँ भी है। बुराई का तो विरोध करना ही चाहिए। मेरे मित्रों, अराजकता का भी विरोध करना आवश्यक है। उचित और अनुचित परस्पर विरोधी है, इन दो में समझौता हो ही नहीं सकता है। इस अभियान में दाऊद यरूशलेम में ही था और इसी समय उसने बतशेबा के साथ महान पाप भी किया था। ध्यान दें कि परमेश्वर दाऊद के उस पाप का उल्लेख यहाँ नहीं करता है। परमेश्वर कहता है कि वह हमारे पाप क्षमा करके उन्हें स्मरण नहीं करता है। वह इस बात में गंभीर है, इसमें कोई भी शक नहीं। इसराइल में के एक और शाश्वत शत्रु थे जो पलिस्ती थे। हम पहला इतिहास की पुस्तक 20 अध्याय उसके 4 से 6 पद में पढ़ते हैं। इसके बाद गेजेर में फलिस्तियों के साथ युद्ध हुआ, उस समय हुशाई सिब्बकै ने सिप्पी को जो रापा की संतान था मार डाला और वे दब गए, और फलिस्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ, उसमें याइर के पुत्र एलहानान ने गती गोलियात के भाई लहमी को मार डाला, जिसके बर्छे की छड़ जुलाहे की डोंगे के समान थी। फिर गत में भी युद्ध हुआ और वहां एक बड़े डील का पुरुष था जो रापा की संतान था, और उसके एक एक हाथ पांव में 6-6 उंगलियां अर्थात सब मिलाकर 24 उंगलियां थी। मेरे मित्रों, पलिस्तियों से युद्ध करते समय दाऊद और उसके योद्धाओं ने 3 पलिस्ती दानों को मार गिराया था। दाऊद की प्रसिद्धि का कारण था कि उसने एक युवा होते हुए भी पलिस्ती दानों गोलियत को मार गिराया था। दाऊद के संपूर्ण जीवन काल पलिस्ती उसके और इसराइल के अथक शत्रु थे। मेरे मित्रों, विश्वासियों का भी एक शाश्वत बैरी है। हम आकाश के दुष्टताओं से युद्ध करते हैं। आप यदि परमेश्वर की संतान हैं तो उसके सैनिक भी हैं। यही कारण है कि इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 11 पद में हमें परमेश्वर के हथियार धारण करने का आदेश दिया गया है। हमें किसी से युद्ध करने नहीं जाना है, हमें दृढ़ खड़े होना है। परमेश्वर की बातों के लिए दृढ़ खड़े होने का अर्थ है युद्ध करना। आपको अच्छा लगे या न लगे, आप युद्ध में हैं। संसार में युद्ध समाप्त हो सकते हैं, परंतु जब तक बुराई समाप्त नहीं हो जाती, युद्ध चलता रहेगा। मेरे प्रियो, पौलुस ने इफिसुस की कलीसिया को लिखा है इफिसियों के पत्र 6 अध्याय उसके 13 पद में, इसलिए परमेश्वर के सब हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अध्याय 20 में आपके और मेरे लिए यही एक महान संदेश है। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 20 समाप्त होता है और अध्याय 21 में हम देखेंगे दाऊद का जनगणना का पाप। इस अध्याय में दाऊद के घोर पाप का उल्लेख है जिसका बतशेबा से कोई भी संबंध नहीं है। मेरे प्रियो, मनुष्य प्रायः सोचता है, समझ में नहीं आता कि यह ऐसा घोर पाप कैसे हो सकता है। वे सोचते हैं कि बतशेबा के साथ किया गया पाप दाऊद का सबसे बड़ा पाप था। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मैं मानता हूँ कि वह एक घोर पाप था, परंतु स्मरण रखें कि यहाँ हम परमेश्वर का दृष्टिकोण को देख रहे हैं। परमेश्वर बतशेबा के साथ दाऊद के पाप का उल्लेख यहाँ पर नहीं करता है, परंतु जनगणना के पाप को उजागर करता है, क्योंकि यह आत्मिक स्तर का पाप है और इसका दाऊद के उद्धार पर लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु निश्चय ही इसका कुप्रभाव दाऊद और इसराइल के साथ परमेश्वर के संबंधों पर पड़ेगा। आइए हम देखें पहले इतिहास की पुस्तक 21 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, और शैतान ने इसराइल के विरोध उठकर दाऊद को उसकाया कि इसराइलियों की गिनती ले। मेरे मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अब एक वास्तविक अपराधी पकड़ा गया। इस संपूर्ण घटना के पीछे शैतान था। इससे दाऊद के इस घोर पाप पर प्रकाश पड़ता है। बतशेबा के साथ किया गया पाप दाऊद का शारीरिक पाप था। भजन संहिता 51 में वह पुकारता है, जिसे हम पद 1 में पढ़ते हैं, हे परमेश्वर, अपने करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। जी हाँ, यहाँ वह बतशेबा के साथ किए गए पाप की क्षमा मांग रहा है। परंतु इस अध्याय में शैतान इसराइल के विरुद्ध उठा था। उसने दाऊद को उकसाया कि इसराइलियों की गिनती ले। पहले इतिहास की पुस्तक 21 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, तब दाऊद ने युवाब और प्रजा के हाकिमों से कहा, तुम जाकर बर्शेबा से ले दान तक के इसराइली की गिनती लेकर मुझे बताओ कि मैं जानूं कि वे कितने हैं। मेरे मित्रों, आपको स्मरण होगा कि मूसा ने 2 बार जनगणना की थी। गिनती की पुस्तक में लिखा है कि मूसा ने पहली जनगणना तब की थी जब उन्होंने निर्गमन के आरंभ किया था, और दूसरी बार जंगल पार करने के बाद। उस जनगणना में बुराई वाली बात नहीं थी, कम से कम परमेश्वर ने उसे गलत नहीं समझा था, परंतु यह जनगणना पाप मानी गई। कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ दाऊद घमंड से भर गया था। तो आइए हम देखें कि आगे क्या होता है। पहला इतिहास की पुस्तक 21 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, योआब ने कहा, यहोवा की प्रजा के कितने ही क्यों ना हो, वह उनको 100 गुना बढ़ा दे, परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या वे सब राजा के अधीन नहीं है? मेरा प्रभु ऐसी बात क्यों चाहता है? वह इसराइल पर दोष लगने का कारण क्यों बने? यहाँ एक मनुष्य है जो कंप्यूटर का पहला विरोधी है। दाऊद आंकड़े देखना चाहता था, जो पाप है। आज सब कुछ कंप्यूटरीकृत किया गया है, आप और मैं भी। योआब ने इस काम में आपत्ति प्रकट की क्योंकि उसकी समझ में यह घमंड था। मेरे विचार में इसमें घमंड था, परंतु घमंड पाप का पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। यिर्मयाह की पुस्तक 9 अध्याय उसके 23 और 24 पद में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपने वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। मेरे मित्रों, दाऊद की इस जनगणना से परमेश्वर प्रसन्न नहीं था, क्योंकि दाऊद परमेश्वर की अपेक्षा अपनी क्षमता पर गर्व कर रहा था। अतः जनगणना की प्रेरणा उसके अविश्वास का परिणाम थी। दाऊद परमेश्वर पर भरोसा रखने की अपेक्षा जनसंख्या पर भरोसा कर रहा था। पहला इतिहास 21 अध्याय उसके 4 से 6 पद में हम पढ़ते हैं, तो भी राजा की आज्ञा योआब पर प्रबल हुई, तब योआब विदा होकर सारे इसराइल में घूमकर यरूशलेम को लौट आया। तब योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ दाऊद को सुनाया, और सब तलवारीय पुरुष इसराइल के तो 11 लाख और यहूदा के 4,70,000 ठहरे, परंतु इनमें योआब ने लेवी और बिन्यामीन को न गिना, क्योंकि वह राजा की आज्ञा से घृणा करता था। ध्यान दें, इसराइल में 11 लाख पुरुष थे और यहूदा में 5 लाख पुरुष थे। मूसा की जनगणना में 6,30,000 पुरुष थे। इसका अर्थ यह हुआ कि दाऊद के पास 10 लाख पुरुष अधिक थे। यह दाऊद चरवाहे और दाऊद राजा में कैसा अंतर है? वह युवा चरवाहा जनगणना जानता ही नहीं था जब गोलियात ने इसराइल को चुनौती दी थी। उसने बस यही कहा, मैं उसका सामना करूंगा। उसमें साहस कहां से आया था? वह केवल परमेश्वर में विश्वास करता था। वह गोफन और 5 पत्थर लेकर चल पड़ा। और मेरे मित्रों, 10 लाख पुरुषों के रहते हुए आप में परमेश्वर पर निर्भर रहने का विचार ही नहीं आता है, परंतु जब आपके पास केवल 1 गोफन और 5 पत्थर हो, तब आपको परमेश्वर की आवश्यकता का बोध होता है। दुनिया के महान राष्ट्र रोम, बेबीलोन, यूनान, मिस्र सब समाप्त हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें सेनाओं पर भरोसा था। मेरे प्रियो, मुझे गलत न समझे, इस दुष्ट संसार में रक्षा हेतु किसी राष्ट्र को सेना की आवश्यकता होती है। हम ऐसी मूर्खता या धर्मांध का काम भी न करें कि सेना की आवश्यकता से इनकार करें, परंतु हमारी निर्भरता सेना पर न हो। योआब आपत्ति प्रकट करते हुए कहता है, दाऊद, ये सब पुरुष तेरे ही हैं, उनकी गणना करने से क्या लाभ? परमेश्वर ने तुझे इतने पुरुष दिए हैं, वे परमेश्वर के लिए बहुत हैं। परंतु दाऊद ने जनगणना पर बल दिया। मेरे मित्रों, आज राष्ट्रों का सोचना है कि एटम बम और हाइड्रोजन बम के रहते परमेश्वर की क्या आवश्यकता। मेरे मित्रों, हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। आज मनुष्य निरर्थक बातों पर भरोसा करता है। दाऊद का अविश्वास ही उसका घोर पाप था। यह तथ्य अनेक जनों की समझ में नहीं आता है। यह तो वही बात हुई कि एक शराबी आराधना में लड़खड़ाता हुआ आता है और लोग उस पर उंगली उठाते हैं, परंतु आप आराधना में अविश्वास के साथ आते हैं तो कौन बुद्धिमान है? यदि आपका अविश्वास पकड़ा जाए तो क्या उसका पाप सबसे बड़ा पाप नहीं है कि गंभीर बात समझी जाए? मेरे मित्रों, परमेश्वर यहाँ हमें कह रहा है कि वह अविश्वास को अत्यधिक गंभीर बात मानता है। अविश्वास का पिता शैतान है। वह हमारे मन मस्तिष्क में अविश्वास लाता है कि हम परमेश्वर पर भरोसा ना करें। वह हमें उकसाता है कि हम मनुष्य पर भरोसा रखें, सेना पर भरोसा रखें, पैसों पर भरोसा रखें, अपने ओहदों पर भरोसा रखें। परमेश्वर की अपेक्षा हर बात पर भरोसा रखें। आंकड़ों का यही पाप है। मेरे प्रिय मित्र, आज अधिकांश जन सृजनहार की अपेक्षा गणित पर भरोसा रखते हैं। वे मसीह पर नहीं, मशीन पर भरोसा रखते हैं। वे संख्या पर भरोसा रखते हैं, प्रभु पर नहीं, जो हमारा सृष्टि करता है। मेरे प्रिय मित्रों, दाऊद ने शिक्षा ग्रहण कर ली थी। भजन संहिता 118 उसके 8 और 9 पद में वह कहता है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है। भजन संहिता 71 उसके 1 में कहता है, हे यहोवा, मैं तेरा शरणागत हूँ, मेरी आशा कभी न टूटने पाए। मेरे मित्रों, हमें स्वयं से यह हृदय वेधी प्रश्न पूछना है, क्या हम सच में परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? क्या हम सच में परमेश्वर में विश्वास करते हैं? इब्रानियों के पत्र 11 अध्याय के 6 पद में लिखा है, विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना असंभव है। जी हाँ, प्रभु यीशु ने कहा था कि जब पवित्र आत्मा संसार में आएगा, तुम पर आएगा, तब वह संसार को पाप का बोध कराएगा। कौन से पाप का? यूहन्ना 16 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। रोमियों की पुस्तक पत्री 14 अध्याय उसके 23 पद में पौलुस कहता है कि जो कुछ विश्वास नहीं वह पाप है। यह दाऊद का पाप था और घोर पाप था। दाऊद को शीघ्र ही बोध हुआ कि उसने कैसी भयानक गलती या पाप या काम किया है। दाऊद अपना दंड चुनता है। पहला इतिहास के पुस्तक 21 अध्याय उसके 7 और 8 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और यह बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसलिए उसने इसराइल को मारा। और दाऊद ने परमेश्वर से कहा, यह काम जो मैंने किया है वह पापमय है, परंतु अब अपने दास का अधर्म दूर कर, मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है। परमेश्वर दाऊद के सामने दंड चुनने का विकल्प रखता है। पहला इतिहास की पुस्तक 21 अध्याय उसके 9 से 12 पद में हम पढ़ते हैं, तब यहोवा ने दाऊद के दर्शी गाद से कहा, जाकर दाऊद से कह कि यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूं, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। तब गाद ने दाऊद के पास जाकर उससे कहा, यहोवा यूं कहता है कि जिसको तू चाहे उसे चुन ले, या तो 3 वर्ष का काल पड़े वा 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझे नाश करते रहें, और तेरे शत्रुओं की तलवार तुझ पर चलती रहे, वा 3 दिन तक यहोवा की तलवार चले अर्थात मरी देश में फैले, और यहोवा का दूत इसराइल देश में चारों ओर विनाश करता रहे। अब सोच कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। मेरे मित्रों, अब दाऊद की बात सुने। यह बहुत बड़ी बात है। अब तक तो आप मुझसे सहमत हो गए होंगे कि दाऊद एक महापुरुष था। वह आपके और मेरे समान एक मनुष्य भी था। उसने पाप किया, उसमें अपने दोष थे, परंतु उसने अपना उद्धार नहीं खोया और न ही परमेश्वर के साथ की सहभागिता। मेरे मित्रों, दाऊद अपने परमेश्वर को जानता था। अब यहाँ एक मनुष्य है जो जनगणना करवा रहा है, क्योंकि उसे मनुष्यों पर भरोसा होने लगा था। अब वह अपने कृतज्ञ को समझ रहा है। मेरे विचार में तो अब वह वृद्ध हो गया था और उसे वह युवा चरवाहा स्मरण आया जो एक गोफन और 5 पत्थर लेकर गोलियत से युद्ध करने को निकला था। उसे परमेश्वर पर कैसा भरोसा था और उस समय उसकी गवाही कैसी आदर्शवादी थी। दाऊद भी हमारे समान ही एक मनुष्य था। हम परमेश्वर पर उद्धार के निमित्त भरोसा रखते हैं, परंतु समस्याओं के निवारण हेतु उस पर भरोसा नहीं रखते। जी हाँ, दाऊद ने अपने शत्रुओं को देखा। वे असंख्य थे, वे राष्ट्र विशाल राष्ट्र थे। अतः दाऊद सोचने लगा कि उनकी तुलना में उसकी सेना कितनी बड़ी होगी। वह कुछ समय के लिए भूल गया था कि उसका परमेश्वर बड़े से बड़े राष्ट्र, बड़े से बड़े दानव को भी जिता सकता है, उसको हरा सकता है। वे उसे क्या धमकी देंगे? अतः उसने जनगणना करवाई। हमने कितनी बार जनगणना की है, हमने परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा और अन्य किसी बात पर विश्वास किया है। परंतु मेरे मित्रों, दाऊद अपने परमेश्वर को जानता था। वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है, मुझे मनुष्य के हाथों में पड़ने नहीं देना, मैं परमेश्वर के हाथों में पड़ना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके अनुभव में परमेश्वर दयावान सिद्ध हुआ है। मुझे चिंता इस बात की है कि हम में से बहुतों ने यह नहीं सीखा है। मेरे मित्रों, हम भजन संहिता 103 उसके 10 और 11 पद में देखते हैं, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। परमेश्वर उद्धार के निमित्त दयावान है। आज उसने भटके हुए संसार के लिए उद्धार को लिए तैयार है। किस आधार पर? मसीह दया का आसन है। आपको स्मरण होगा कि यूहन्ना ने कहा है, पहला यूहन्ना के पत्र 2:2 में, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। जी हाँ, यह प्रायश्चित क्या है? प्रायश्चित का अर्थ है दया आसन। उसके पास दया की बहुतायत है। यदि आप उधार पाना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के साथ न्यायालय में जाना चाहिए और दोष स्वीकार करके दया की भीख मांगना है। उसके पास बहुत से दया है। वह इसी के द्वारा आपका उद्धार करेगा। आपके लिए क्षमा का प्रावधान है। आपको याचना करने की आवश्यकता है। जी हाँ, परमेश्वर के विधान में दया अपरंपार है। मैं अपने जीवन में देखता हूँ कि परमेश्वर कैसा भला रहा है। वह आज भी कैसा दयावान है, मेरे लिए ही नहीं वरन संपूर्ण भटके हुए संसार के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए वह दयावंत है। वह कल रात दंड देने के लिए क्यों नहीं आया, जबकि मैंने बहुत पाप किए हैं, आपने पाप किए हैं, जगत ने पाप किए हैं, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह दयावान है। वह एक दिन आएगा, परंतु वह धीरजवंत है, वह दयावंत है। वह मन फिराव का समय देता है, पश्चाताप करने का समय देता है। एक पिता अपनी संतान पर कैसा दयावान है, वैसा ही वह भी दयावान है। उसकी दया भविष्य में भी बनी रहेगी। हम निश्चित हों उसकी दया पर निर्भर कर सकते हैं। उसका कभी अंत नहीं होगा। जी हाँ, यह उसका क्षणिक आचरण नहीं है कि वह प्रसन्न हुआ और फिर सब समाप्त। यह उसके गुणों का विकास नहीं है। उसने किताब पढ़कर दया दिखाना नहीं सीखा है। भजन संहिता 136 उसके 1 में दाऊद कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। अतः दाऊद स्वयं को परमेश्वर की दया का पात्र बना देता है। हम पहला इतिहास के पुस्तक 21 अध्याय उसके 14-17 में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, तब यहोवा ने इसराइल में मरी फैलाई और इसराइल में 70,000 पुरुष मर मिटे। फिर परमेश्वर ने एक दूत यरूशलेम को भी उसे नाश करने को भेजा और वह नाश करने ही पर था कि यहोवा दुख देने से खेदित हुआ और नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच ले। और यहोवा का दूत यबूसी ओर्नान के खलिहान के पास खड़ा था और दाऊद ने आंखें उठाकर देखा कि यहोवा का दूत हाथ में खींची हुई और यरूशलेम के ऊपर बढ़ाई हुई एक तलवार लिए हुए आकाश के बीच खड़ा है। तब दाऊद और पुरनिये टाट पहने हुए मुंह के बल गिरे। तब दाऊद ने परमेश्वर से कहा, जिसने प्रजा की गिनती लेने की आज्ञा दी थी, वह क्या मैं नहीं हूँ? हाँ, जिसने पाप किया और बहुत बुराई की है, वह तो मैं ही हूँ, परंतु इन भेड़ बकरियों ने क्या किया है? इसलिए हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तेरा हाथ मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो, परंतु तेरी प्रजा के विरुद्ध ना हो कि वे मारे जाएं। मेरे प्रियो, दाऊद की इस अद्भुत प्रार्थना पर ध्यान दे। वह अपने पाप का पूरा दोष स्वीकार करता है। मैं कहना चाहूंगा कि दाऊद बहुत बदल गया है। जब उसने बतशेबा के साथ पाप किया था, तब वह एक शब्द भी उसकी चर्चा में नहीं करना चाहता था। उसने तो हित्ती उरिया की हत्या कर दोष भी किया, किसी और पर थोपना चाहता था। दाऊद ने अपना पाप छिपाना चाहा था। अब वह बदल गया है। उसने शिक्षा ग्रहण कर ली है। उसकी आत्मा परमेश्वर के समक्ष नंगी अर्थात खुली खड़ी है। वह परमेश्वर से कहता है, मैं अपराधी हूं, मैंने पाप किया है, आप मुझे दंड दें, मुझे दंड मिलना चाहिए। मेरे प्रिय मित्रों, क्या आज आप परमेश्वर के सम्मुख दाऊद के समान खुले रूप में अपने पापों को अंगीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या आप कहेंगे, हाँ प्रभु, मैंने पाप किया, मैंने बुराइयां की, मैंने चोरी की है, मैंने हत्या की है, मैंने व्यभिचार किया है, मेरे वजह से मेरे परिवार में, मेरे कलीसिया में, मेरे समाज में पाप के चलते कठिनाइयां आई है? क्या आज आप परमेश्वर के सामने इन सब बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? यदि आज आप अपने पापों को मान लेते हैं, अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं, निश्चय जानिए कि परमेश्वर आपको आज इसी समय में क्षमा करने के लिए तैयार है। अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस लोह के द्वारा आपको धो करके शुद्ध करने में, पवित्र करने में वो क्षमता रखता है, क्योंकि वह दयावंत परमेश्वर है, दया से भरा हुआ है। क्या आज आप चाहते हैं कि आप भी अपने जीवन में क्षमा प्राप्त करें, अपने जीवन में शांति प्राप्त करें? यदि हाँ, आप अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। हमारे जीवो तो सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हमारे जितने भाई बहनों ने आज आपके वचन को सुना है और इस समय जो अपने जीवन में निर्णय ले रहे हैं कि अपने पापों को खोल देंगे और खोल रहे हैं, प्रभु आप उनके पापों को क्षमा करें, उन पर कृपा दृष्टि प्रदान करें, उनके जीवन से बोले और बातचीत करें, ताकि अपने जीवन में उस महान शांति को देखने पाएं जो आप उनके जीवन में देना चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे श्रोता भाई बहनों को आशीष दिया है, उनके जीवन में आपने कार्य किया है। हम आपको आदर मान सम्मान देते हैं और विनती करते हैं कि आप हर एक की सहायता करें। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो शोक है करते, शांति आनंद पाएंगे। सुनो धन्य वचन यीशु का, धन्य वचन होगा धन्य जीवन। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो शोक है करते, शांति आनंद पाएंगे। सुनो धन्य वचन यीशु का, धन्य वचन होगा धन्य जीवन। धन्य है जो नम्र।